नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 4 अध्याय 25 और श्लोक संख्या 26 आप सभी हमारे पीछे दोहराएंगे। का त्वं कंजपलाक्षाक्षी का त्वं कंजपलाक्षाक्षी कस्यासीह कुतः सति कस्यासीह कुतः सति इमामुपापुरीं भीरु इमामुपापुरीं भीरु किं चिकीर्षसि संसमे किं चिकीर्षसि संसमे। का कौन त्वं तुम कंजा कमल की पलासा पंखड़ियों के समान अच्छी आँखें कस्य किसकी असी हो यह यहाँ कुता कहाँ से सती हे साध्वी इमाम यह उप निकट पुरी नगर भीरु हे डरपोक किम क्या चिकीर्षसि करना चाहती हो संस कृपा करके बताओ सॉरी कृपा करके बताओ यानी बताओ मैं मुझे। अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। हे कमल नयनी कृपा करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो। तुम अत्यंत साध्वी लगती हो यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है तुम क्या करना चाह रही हो कृपया ये सारी बातें मुझसे कहो। तात्पर्य वेदांत सूत्र की प्रथम सूक्ति है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य देह पाकर अपने आप से तथा अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न करने चाहिए। मनुष्य निम्न जीवों में उनकी बुद्धि जीवन की आवश्यकताओं खाने सोने संभोग करने तथा रक्षा करने से ऊपर नहीं उठ पाती। कुत्ते बिल्लियां तथा चीते भी कुछ न कुछ खाने के लिए कहीं न कहीं सोने के लिए अपनी रक्षा के लिए तथा ढंग से संभोग करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। किंतु मनुष्य का शरीर पाकर उसे इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि स्वयं से यह पूछे कि मैं कौन हूँ यह संसार में क्यों आया मेरा क्या कर्तव्य है परम नियंता कौन है जड़ तथा जंगम में क्या अंतर है आदि आदि ऐसे अनेक प्रश्न हैं। जो बुद्धिमान है उसे तो प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत के विषय में जिज्ञासा करना चाहिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हर जीव में कुछ न कुछ बुद्धि होती है किंतु मनुष्य का रूप मिलने पर जीव को अपने आध्यात्म स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है। कहा जाता है कि जो केवल अपने शरीर के विषय में जागरूक रहता है वह पशु के तुल्य है। भगवद गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपमोहनम च। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझे से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। पशु रूप में जीव ईश्वर को बिल्कुल भूला रहता है, यह अपमोहनम या विस्मृति है। किंतु मनुष्य रूप में यह चेतना अधिक विकसित होती है, अतः मनुष्य को ईश्वर के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है। मनुष्य देह धारण करके उसे अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्नों के पूछने में करना चाहिए, जिस प्रकार के पुरंजन जीव अज्ञात तरुणी से पूछता है कि वह कहाँ से आई है, उसका काम क्या है आदि आदि। ये आत्मतत्व के विषय में जिज्ञासा है। निष्कर्ष यह निकला कि जब तक जीव आत्मतत्व आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक वह पशु के ही समान है। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना सलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरु न वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रश भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वार्षादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं। भूतैर्महद्भिः इमां पुरा विभो निर्मायसे ते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणानसो डसोडसात्मकं सोलंकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोलंकर शिष्ट भगवान वचांसि में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आराध्यौ भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या कांचित उपासना ब्रजवधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न परः। श्री तत्रादरौ न परः। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, कई दिन से आप लोग सुन रहे हैं, इससे मन की भी तुष्टि हो रही है, आत्मा की भी तुष्टि हो रही है, दोनों ही तुष्ट हैं। तो इस प्रसंग की जो शुरुआत हो रही है, आप सभी जानते हैं राजा प्राचीन ब्रही जब यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ में जो पशु बलि दे रहे थे उसको जब नारद जी ने देखा, नारद जी ने भी भगवत प्रेरणा से ही देखा, भगवान चाहते थे कि नारद जी राजा प्राचीन ब्रही को कुछ उपदेश करें, सत्मार्ग पर उसको जो है उपदेश करें। तो इसलिए नारद जी आए और नारद जी ने राजा प्राचीन ब्रही से कहा कि हे राजन, तुम जो यज्ञ जो कर रहे हो ये तो ठीक है, ये तो जो है एक भगवत प्रीति के लिए एक बहुत अच्छा साधन है और साक्षात यज्ञ तो भगवत स्वरूप है, लेकिन इस यज्ञ में जो पशु बलि दी जा रही है इससे आप कौन सा उद्देश्य, कौन सा प्रयोजन आप सिद्ध करना चाहते हो? भगवान की प्रीति के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए एक जीव को मार करके और कोई अपना जो है अपना कोई प्रयोजन सिद्ध करे, कोई लाभ प्राप्त करे, तो ये तो बिल्कुल असंभव है, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि नारद जी ने देखा कई सारे पशुओं का तो वध कर चुका है और सैकड़ों पशु बंधे हुए हैं। तो नारद जी ने राजा प्राचीन ब्रही को संबोधित किया कि राजन, वास्तव में किसी भी साधन का उद्देश्य जो है, किसी भी कार्य का जो उद्देश्य है वो भगवत प्रसन्नता है, दुखों की आंत्यक निवृत्ति और परमात्मा की जो है प्रसन्नता प्राप्ति, ये जो है हर किसी कार्य का यही उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन इससे न तो भगवान की प्रीति बढ़ रही, क्योंकि हर जीव को इस संसार के अंदर भेजा है भाई, स्वतंत्र रूप से भेजा है, उसको जीने का अधिकार दिया है, लेकिन तुम उसके जीवन में तुम बाधा डाल रहे हो, तुम्हें इतना जो है समझ में नहीं आ रहा कि इससे जो है तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक जो निवृत्ति है वो भी नहीं होने वाली और परमात्मा की तो प्राप्ति कभी होने वाली ही नहीं है। इसलिए सत्यता तो यही है कि कोई भी साधन में किसी जीव को जो है कष्ट दे करके उस साधन को संपन्न किया जाए ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए जब नारद जी ने राजा प्राचीन ब्रही को इस प्रकार समझाया और राजन नारद जी ने कहा कि हे राजन, इतना ही नहीं, तुमने जिन जिन पशुओं का वध किया है वो तुम्हारा सारा का सारा जो है इंतजार कर रहे हैं आपके लिए, तुमने जैसा स्वागत किया है उससे अच्छा स्वागत करने के लिए वो भी तैयार हैं। कोई तो अपने जो है बिल्कुल पैने लोहे के लोखंड के बने हुए सींगों को दिखा रहे हैं, देखो तुम देखो, नारद जी तो जो है सबको दिखा सकते हैं। तो नारद जी ने पूरा दिखा दिया, उसका भविष्य दिखा दिया कि देखो इस शरीर के त्यागने के बाद में कितने जानवर जो तुमने मारे हैं सारे के सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कोई अपने तीक्ष्ण दांतों को दिखा करके इंतजार करके आओ राजन, जो तुमने जो स्वागत किया है उससे कुछ ज्यादा स्वागत हम करने के लिए तैयार हैं। तो जब राजा प्राचीन ब्रही ने इस प्रकार देखा तो देख करके उनका दिल दहल गया और उनको एहसास हुआ कि वास्तव में जिन कार्यों को मैं कर रहा हूं, मैं तो सोच रहा था कि मैं एक बहुत अच्छे कार्यों को संपन्न कर रहा हूं, इनसे प्रभु प्रसन्न होंगे, लेकिन सत्यता है कि इनसे तो प्रभु क्या, जो जीव मैंने मारे वो भी मेरे प्रसन्न नहीं है। इसलिए तुरंत उन्होंने जो है नारद जी को समर्पित किया कि हे गुरुदेव, हम अब आपकी शरण में हैं। इस कर्म बंध के फांस से किस प्रकार हम मुक्त हो सकते हैं? हे नारद जी, हे गुरुदेव, अब हमें क्या करो, आप हमें जो है कुछ उपाय बताओ। तो फिर नारद जी जो है एक प्रसंग कह रहे हैं राजा पुरंजन का। इस प्रसंग को बता करके बताना चाहते हैं कि जिस कार्य को तू करके जो कार्य हासिल करना चाहता है, जिन भोगों को, जिन विलासों को तू भोगना चाहता है, जिन ऐश्वर्यों को तू भोगना चाहता है, ऑलरेडी उसके पास में वो सारे भोग, वो सब राजा पुरंजन के पास में चल करके आ रहे हैं। एक रूपक, एक कथा के रूप में, एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन इतने सारे भोगों को भोग करके अंत में एक तो सुख नहीं मिला उसको पूरे जीवन में, और दूसरा जो मनुष्य की जो अंतिम गति है भगवत प्राप्ति, वो तो बहुत दूर रही। राजा से फिर वो रानी बन गया, पुरंजन से फिर वो पुरंजनी बन गया आगे चल करके। तो कहने का आशय है तो जो है इस प्रसंग को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिन कार्यों को करके हम जो सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, ऑलरेडी पहले तुम देखो जिन्होंने उस सिद्धियों को प्राप्त किया उनकी क्या दशा हुई है। तो इसलिए यहां पर जो है इस प्रसंग की शुरुआत की जा रही है। तो वास्तव में जो है सिद्धांत तो यही है, कोई भी कार्य किया जाता है, किसी भी कार्य से जो है किसी भी दूसरे जीवात्मा का अहित नहीं करना चाहिए, उसको सताना नहीं चाहिए। आप सभी जानते हैं, सबरी के बारे में सुने होंगे, जिस समय सबरी का एक दिन का केवल बाकी रहा है, जो है दूसरे दिन उनका विवाह संपन्न होने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने देखा कि जो जो पशुओं की जो शाला है उसमें कई सारे पशु बंधे हुए हैं। जब सबरी ने देखा तो देख करके उनको आश्चर्य हुआ और उन्होंने पिताजी से पूछा कि हे पिताजी, ये इतने सारे पशु किसके लिए बंधे हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि हे मेरी पुत्री, कल तुम्हारी जो बारात आने वाली है उस बारात में जो है उनका भंडारा करने के लिए, उनके खाने के लिए ये सारी जो है मैं व्यवस्था कर रहा हूं। और जैसे उन्होंने सुना कि हे राम राम, हे प्रभु, मेरे कारण इतने सारे पशुओं की कल हत्या होने वाली है, तुरंत मानो सारे पशु जो है सबरी से आंख में आंख मिला करके हृदय से पुकार करते, आर्द भावना से पुकार रहे हो कि हे सबरी, हमारी जान तुम्हारे हाथ है, तुम चाहें तो हमारी जान को बचा सकती हो, अन्यथा अब हमारी जान बचने के लिए नहीं है। और तुरंत जो है सबरी जी उनका जो है दया से हृदय भर गया, उनके जो है हृदय में कंपन हो गया, इतनी डर गई। उन्होंने देखा कि इतने सारे पशुओं का वध होगा, उसी रात्रि बिना किसी कहे और जो है सीधे घर से निकल करके वो जंगल में चले गए। यद मेरी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए इतने सारे पशुओं का वध होगा, ये मेरे को इस प्रकार की इंद्रियों की संतुष्टि, इंद्रियों को सुख देना, इंद्रियों को भोग देना, ये ठीक नहीं है। तुरंत उसने घर छोड़ करके चले गए। और अंत में जो है आप सभी जानते हैं, जो साक्षात भगवान के, जिनको रामचंद्र जी स्वयं चल करके जो है सबरी को दर्शन देने के लिए गए और अंत में सबरी भगवत धाम गए। तो इसलिए यहां पर भी जो है, जब देखा राजा ने सारा दृश्य देखा, सारी सीनरी देखी, तो घबरा जाते हैं और घबरा करके जो है नारद जी कहते हैं कि इस कर्म बंधन का जो फांस है, मैं इसमें जो फंसता जा रहा हूं, मैं तो समझ रहा था कि मैं इस कर्म बंधन के बंधन से क्या होने वाला था, मुक्त होने वाला हूं, लेकिन आज मेरे को मालूम चला कि वास्तव में मैं फंसता जा रहा हूं, इसलिए कुछ उपाय बताइए। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, सतसंग छाड़ी के नो असते बिलास, ते कारणे लागिला ये कर्म बंद फांस। सतसंग छाड़ी के नो असते विलास, ते कारण लागिला ये कर्म बंद फांस। कर्म बंद फांस, एक कर्म के बंधन की फांस, कैसे शुरुआत होती है, कर्म के बंधन की फांद से निकलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ते कारण लागीला, इस कारण से तो जो कर्म के बंधन की जो फांस है और वो कैसी होती है, जटिल होती है। किसके कारण? तो सतसंग छाड़ी केनु, सतसंग भगवान का जब संग हट जाता है, भगवान से जब हम दूर हट जाते हैं, सत का संग जब हम छोड़ देते हैं, सत पुरुषों का संग हम छोड़ देते हैं, भगवान का संग छोड़ देते हैं, या जो है भगवत कथाओं का संग जब हम छोड़ देते हैं, तो असते विलास, फिर हम क्या करते हैं, असते विलास, हम फिर विलास करते हैं, फिर भोग करते हैं, कहां असत वस्तुओं का फिर हम भोग प्रारंभ कर देते हैं। वास्तव में ये जो सारे जो भोग हैं, भगवान ने गीता में जो है कहा भी है कि जितने भी जो सारे भोग हैं, ये वास्तव में भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, क्योंकि भुञ्जत यज्ञ अशिष्टा, क्या नाम है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, संसार के अंदर जो कुछ भी है उसके एकमात्र प्रभु भोक्ता हैं। लेकिन जैसे ही सत्संग छाड़ी, ये बात हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हर वस्तु भगवान की है और इसका संबंध भगवान से होने के कारण भगवान की ही सेवा में जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही सत्संग छाड़ी, जैसे ही हम सत्संग को छोड़ देते हैं, तो क्या है, असते विलास, फिर जो है संसार की वस्तु हमें जो है अपनी लगने लगती है। सुखम ऐन्द्रियम देत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयतनात। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे असुर साथी हो, हे मेरे मित्र हो, सुखम ऐन्द्रियकम देत्या, जो इंद्रियों के जो सुख हैं सर्वत्र लभ्यते देवात, वो तो जो है संसार में सर्वत्र मिल जाते हैं, सब शरीरों में मिल जाते हैं, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसके लिए जो है इंद्रिय सुख उपलब्ध नहीं हो। मनुष्य जिन भोगों को भोग रहा है, पशु भी भोग रहे हैं, पक्षी भी भोग रहे हैं, क्या अंतर, क्या सर्वत्र लभ्यते देवात यथा दुखम अयतनात, इसके लिए प्रयास नहीं करने की जरूरत है, इनके लिए प्रयास बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। यथा दुख, जैसे दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, समय के अनुसार उसके भाग्य के अनुसार समय पर दुख आ जाता है, उसी प्रकार सुख भी समय पर आकर के हमारा स्वागत करेगा, ये बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो सत्कर्म आप कर रहे हैं, ये जो सकाम कर्म कर रहे हैं, जिन यज्ञों के में तुम जो पशुओं की बलि दे रहे हैं, वास्तव में ये जो कर्म है तुम्हारे दुख का नाश नहीं कर सकते, पाप कर्म भी तुम्हारे दुख का नाश नहीं कर सकते, अच्छे कर्म भी दुख का नाश नहीं कर पाते हैं, और जो है बुरे कर्म भी जो है दुख का नाश नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम यह है कि कर्म बंध पास, ये जो कर्म का जो बंधन की जो पास है संसार के अंदर, बार बार जन्म मरण जरा व्याधि का ये बंधन है, ये जो है अथा चलता रहेगा, ये जो है कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता। प्रश्न उठता है कि जी अच्छे कर्मों से दुख कैसे मिलता है? हाँ मिलता है। आप देखो अच्छे कर्म से आपको जो है अच्छा शरीर मिल सकता है, समृद्ध परिवार मिल सकता है, भोग विलास की सामग्रियां मिल सकती हैं, बीवी बच्चे अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन क्या इन अच्छे कार्यों से क्या हमारा दुख खत्म हो जाएगा? क्या गर्मी से हम बच सकते हैं? क्या सर्दी से हम बच सकते हैं? क्या रोगों से हम बच सकते हैं? क्या बुढ़ापे से हम बच सकते हैं? और सबसे जो थर्ड क्लास की चीज है और सबसे अच्छी चीज है, मृत्यु से क्या हम बच सकते हैं? बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी जो हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही कर्म हैं, और दोनों ही क्या हैं, दुख देने वाले हैं, और जो है शरीर बंधन, शरीर का जो कर्म बंध है उसको जो है मजबूत करने वाले, कोई भी ढीला करने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने इसके आगे के तात्पर्य में जो है एक दृष्टांत दिए हैं विदेशी लोगों का, पाश्चात्य जगत का उदाहरण दिए हैं। पाश्चात्य जगत में लोग देखने में भी सुंदर लगते हैं। अभी हम मेला में थे उज्जैन के में, तो शाम के समय जो जो केनिया साइड के, जो साउथ अफ्रीका के जो कुछ भक्त थे 30-35, हालांकि बिल्कुल वो काले थे, देखने में भी सुंदर नहीं थे, लेकिन जब वो कीर्तन करते थे तो भीड़ सब जगह से हट करके और उनके पास में आ जाया करती थी। एक दिन हम थोड़ा लेट हुए तो हमसे कहा कि भाई जाओ तुम जाओ कीर्तन करते हुए जाओ। अब हमारी तो इच्छा थी नहीं, क्योंकि हम तो जानते थे कि बेइज्जती के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। फिर लेकिन आदेश हुआ तो हमने उसका पालन किया और हम गए कुछ भक्तों को लेकर के। तो जैसे गए न तो कोई बाहर का आया न हमारे जितने भक्त थे, हालांकि बहुत भीड़ चल रहा था, बहुत गैदरिंग थी, लोग बहुत आ रहे थे जा रहे थे। अन्य दिनों में जैसे वो लोग खड़े हो जाते थे कीर्तन करते नृत्य करते तो भीड़ लग जाती थी, लेकिन उस दिन जो है कोई भी बाहर का लोग शामिल नहीं हुआ उस कीर्तन में। दूसरे दिन हमने कहा भाई वो चाहे कितने भी लेट आए हम उन्हीं के साथ में जाएंगे, और फिर हम उनके साथ ही जाते थे। तो कहने का आशय है कि पाश्चात्य जगत में फिर वो तो काले थे, चलो उनका तो कोई ज्यादा स्वरूप सुंदर नहीं था, लेकिन आप देखें इतने सुंदर सुंदर विदेशों में जो है लोग पड़े हुए हैं, सारे भोग विलास की उनके पास में सामग्री की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैसे हिप्पी बनते जा रहे हैं, अर्थात स्वच्छता का परित्याग कर रहे हैं, सत आचरणों का त्याग करके वो लोग जो है रोड़ों पर पड़े हुए हैं, नहाते नहीं है। जो जितना लंबे समय बाद में नहाएगा वो उतना ही बड़ा हिप्पी कहलाएगा, और जिसके बालों की जितनी ज्यादा लटाएं होंगी चिकटे होंगे रगड़ने से जो है जो क्या नाम है मेल जो है एक केवल ऐसे कर देने से जिसका ढेर लग जाए वो समझना चाहिए हाँ ये सबसे बड़ा हिप्पी है, ऐसा मिलना चाहिए। नशा कर रहे हैं लोग, तो पैसे की कमी नहीं है, ऐश्वर्य की कमी नहीं है, बुद्धि शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में जो है सुख नहीं है। एक बार जो है सब बहुत से जानते होंगे, एक आप देखें पैसे अभी कुछ सब पहले अम्बानी जो रिलायंस वाले देखो उनका मालिक, पैसे की कमी है उनके पास में लेकिन क्या वो सुखी दिखाई दे रहे थे। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में केस हुआ था जब हम उस समय वहीं थे जो पोटी चड्डा करके था, दो भाई थे, अपार संपत्ति थी कितनी अनलिमिटेड, और एक छोटी सी बात को लेकर के कुछ जमीन को लेकर के उनकी पैतृक संपदा थी, एक एक भाई उसको बेचना चाहता दूसरे ने मना कर दिया, बोला इसको नहीं बेच सकते, और दोनों की जिद ऐसी बढ़ गई एक ने उसमें गोली मार दी और दूसरे के जो गार्ड थे उन्होंने उसमें गोली मार दी, दोनों के दोनों का रामनाम सत्य हो गया। सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम पुण्यों के बल पर जो है कोई बहुत सुखी हो पा रहे हैं। आप देखो पुण्यों के बल पर देवता लोग जो है स्वर्ग में जाते हैं, एक नहीं पुण्य आत्मा ही स्वर्ग में प्रवेश करता है, पापमात्मा जा ही नहीं सकता, लेकिन क्या हम देवताओं को संतुष्ट देख पाते हैं? देवताओं में भी ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, वहां भी जो है भयभीत रहते हैं, असुरों से भयभीत रहते हैं। अरे असुरों की तो जाने दो, कोई भक्त भी जो कोई तपस्या में लगता है तो जो है इंद्र का जो है इंद्रासन हनने लगता है, उसकी हालत खराब होने लगती है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इसलिए नारद जी इस सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम जिन कार्यों को करने जा रहे हो इनसे वास्तव में तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। होना तो ये चाहिए कि वास्तव में नो उत्पादेत यद रतिं, जिन कार्यों के करने से यदि भगवान के चरणों में हमारी रति नहीं हो रही है, भगवान के चरणों में यदि प्रीति नहीं हो रही है, तो श्रम ए वही केवलम। वो कार्य क्या है? केवल हमारे लिए एक भारा है, एक तो हमने जो है अपना समय वेस्ट किया और दूसरा उसका परिणाम भी अच्छा नहीं मिला, लेबर है, परिश्रम है। श्रम ए वही केवलम, जिन कार्यों से भगवान में प्रीति नहीं होती है, भगवान में मन नहीं लगता है, ऐसे जो कार्य है वो कैसे हैं? वो श्रम ए वही केवलम। इसलिए तुम कौन सा अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो इन सारे पशुओं को वध करके। आज देखो कितनी जबरदस्त हत्याएं हो रही हैं, पशुओं का इतना कंपटीशन लगा हुआ है, कौन कितना मार सकता है, कौन कितना खा सकता है, मार करके कंपटीशन लगा हुआ है, कल्पना करो। फिर जो है हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं कि जी अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, उसके लिए तो हम सब सोच रहे हैं। हालत इतनी खराब करके रखी है कि जहां भी जो जाओ देखो हर चीज में धांधलेबाजी। क्या कोई एक कार्य देखो जिसमें सज्जनता से ईमानदारी से कार्य हो, कहीं भी दिखा दो हमें। हर चीज चाहे ऑफिस में चले जाओ वहां धांधलेबाजी भरी पड़ी है, लेबर रख लो वो अपने धांधलेबाजी पे उतारू है, कुछ भी खरीद लो उसमें भी जो कई सारी चीजें मिक्स रहती हैं। हर कोई इस बात को उसने दिल में बिठा लिया है कि हम जितना फ्रॉड कर सकें, जितना जो है झूठ बोल सकें, जितना जो है पाप कर्म कर सकें, वही हमारे जीवन की सफलता है। ये सब जो है इस बात पे बिल्कुल अपनी बुद्धि को बिल्कुल मन को उसमें जो है धसा सके हैं, उसमें जो बिल्कुल लगा दिया है कि जितना हो उतना लूट लो, लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली, जितना चाहिए उसको लूट लो। आप देखो ये कंपटीशन लगा हुआ है, लेकिन क्या ये मनुष्य शरीर इसी के लिए है, यही कार्य करने के लिए है? अरे जिन कार्यों को करके जो है जो चीज हासिल करना चाहते हैं वो आहार निद्रा है मैथुनम च सामान एतद पशुई नराणाम, ये तो सारे संसार के व्यक्ति सारे जीवात्मा इस कार्य में लगे हुए हैं। तो मनुष्य भी वही कार्य करता है तो वो तो फिर पशु है। तो नारद जी ने जब कहा तो राजा प्राचीन बरही ने हाथ जोड़े, गुरुदेव अब जो हो गई सो हो गई, अब जो है गलती नहीं करूंगा, अब बताइए कर्म बंधन का फंदा कैसे छूटेगा, ये तो मैं बहुत जगड़ चुका हूं। तब जो है प्रभुपाद जी स्टार्टिंग करें इस तात्पर्य की, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र की प्रथम सूक्ति है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य देह पाकर अपने आप से तथा अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न करने चाहिए। अथातो ब्रह्म अथातो ब्रह्म जिज्ञासा या जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यह च कर्म भी है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा या अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को क्या करना है, ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों मैं तापत्र तीन प्रकार के कलह से दग्ध हो रहा हूं, मैं हर कार्य जो है सुख के लिए करना चाहता हूं, आनंद के लिए करना चाहता हूं, लेकिन ये सारी समस्याओं में क्यों मैं जकड़ता जा रहा हूं, क्यों मैं संकटों में जकड़ता जा रहा हूं, इस प्रकार की जिज्ञासा करना चाहिए। लेकिन आजकल कैसी जिज्ञासा हो रही है, तो आपका पुरंजन जो है पुरंजन ही से जिज्ञासा कर रहा है। तो क्या जिज्ञासा कर रहा है, का त्वम, तुम कौन हो, कौन हो भाई तुम, अरे भाई जो भी हो तुम्हें क्या लेना देना, कोई परिचय तो है नहीं तुम्हारा, फिर क्यों पूछ रहे हो उससे। का त्वम, तुम कौन हो, और कंज पलाक्षी विशेषण दे रहे हैं, कंज पलाक्षी कमल दल की तुम्हारी आंखें जो है कमल दल की पंखड़ियों के समान है, कस्य यह कहां से आई है, कस्य यह कस्य कहां से यह कुत और कहां से आई है, इमाम सती, सती मतलब ये जो है उसको साध्वी बता रहे हैं, हे साध्वी तुम कहां से आ रही है। तो जब साध्वी है तो साध्वी के साथ ऐसी बात करनी चाहिए, तुम कौन हो, कहां से हो, क्या तुम्हें लेना देना क्या भाई, जहां से भी आई है जहां भी जा रही है बेचारी जा रही है कि नहीं। जब साध्वी बोल रहे हो तो साध्वी से तो ऐसी बात क्यों करनी चाहिए भाई, वो भी एकांत में बात की जा रही है, एकांत में तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। तो इमाम उपपुरीम भीरु किम चिकित्सा, इस पुरी के पास में मतलब तो मेरे नजदीक आकर के क्या प्रयोजन को सिद्ध करना चाहती है, तुम क्या करना चाह रही हो, कृपया संस में ये सारी बातें क्या करो, तुम मेरे को ठीक ठीक से बताओ। भीरु ये भी विशेषण दे रहे हैं, डरपोक प्रभुपाद जी बोले हैं डरपोक। तो ये जो जिज्ञासा है, अब बताइए कोई एक बहुत महान व्यक्ति जो है इस प्रकार की जिज्ञासा करेगा, तो वास्तव में फिर अन्य जो पशु पक्षी कीट पतंग है उनकी जिज्ञासा है तो फिर कैसी होना चाहिए। हालांकि वो भी जिज्ञासा करते हैं, यदि किसी कुत्ता जो है एक मोहल्ले का दूसरे में पहुंच जाएगा तो तुरंत जो सब अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ पड़ेंगे कहां से आ गया, है कि नहीं। कोई कुतिया पहुंच जाएगी तो 10 अपनी पूंछ हिलाते हुए जो है मुंह चाटेंगे, पैर चाटेंगे, चाटेंगे वो चाटेंगे, उससे जो है जिज्ञासा करें तू कहां से है, कौन है, कौन जिज्ञासा नहीं कर रहा है बताइए। पहले हमें सारे संसार में तो यही जिज्ञासा चल रही है भाई, हर पशु तक इस जिज्ञासा को जानते हैं जो जो है राजा पुरंजन कर रहा है जिस जिज्ञासा को। सारा संसार जो है इसी जिज्ञासा में लगा, कहाँ खाना है, पक्षी भी जो है चाय चाय चाय, मम्मी मम्मी कहाँ से लाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ से खाना मिलेगा, अरे चुप रहे भाई मैं जाती हूँ कहीं से लाती हूँ। वो भी पशु पक्षी भी जो है जिज्ञासा कर रहे हैं सब, कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, कहाँ क्या करना है, सभी तो जो है इस जिज्ञासा में लगे हुए। तो इसलिए यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि आहार निद्रा भय और मैथुनम, सारा संसार इसी जिज्ञासा को लेकर के बैठा है। चाहे कितना भी बुद्धिमान है, जो अपने को समाज का एक श्रेष्ठ व्यक्ति समझते हैं, अपने समाज का जो है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं, उनकी भी जिज्ञासा देखो ऐसी ही जिज्ञासाएं भरी पड़ी हैं। बड़े बड़े राजनेताएं जो हैं इसी प्रकार की जिज्ञासाएं लेकर के बैठे हुए हैं, उनका लक्ष्य जो है यही सारी जिज्ञासाओं के इर्द गिर्द है। तो भाई तुम्हारी जिज्ञासा में और जो है एक पशु पक्षियों की जिज्ञासा में क्या अंतर है, कोई भी रत्ती भर भी अंतर नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि नहीं, जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है उसे जो है उसकी जिज्ञासा जो है सुप्रीम होना चाहिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस तत्व के जिज्ञासा करनी चाहिए। जीव को जो है उस तत्व के जो परम तत्व है जो भगवत तत्व है उसकी उसको जिज्ञासा करना चाहिए। जैसे जो है सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि जो है जिज्ञासा कर रहे हैं, नैमिषारण्य के जंगल में जो 88,000 ऋषि मुनि जब एकत्रित थे, एक ही लक्ष्य लेकर के बैठे थे, भोग जिज्ञासा नहीं, भगवत तत्व जिज्ञासा, सबका एक ही एकमात्र लक्ष्य था। तो उन्होंने जो है सूत गोस्वामी से प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, हे सूत गोस्वामी आप हमें बताइए यह घोरे कलौ प्रायौ जीवः च असुरतां गतः क्लेश आक्रांत तस्यैव शोधने किं परायण। हे गुरुदेव यह घोरे कलौ प्रायः, घोर कलयुग, कलयुग अभी तो घोर कलयुग नहीं है, अभी तो शुरुआत है। इस शुरुआत में वो चीज देखने के लिए मिलनी है जो कभी भी सोचा तक नहीं था, वो चीज देख लो। अब आने वाले समय में तो और कितनी चीजें हम देख सकेंगे इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं एक घोरे कलौ प्रायः जीवच असुरतां गतः, जीवों की जो प्रवृत्ति है, जीवों की जो विचारधारा है, जीवों के जो क्रियाकलाप हैं असुरतां गतः, कैसे हो गए हैं, बिल्कुल असुरों को बिठा दो, ये दूसरे असुरों को जो उठा दो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो क्लेश आक्रांतस्य तस्यैव, हर जीव हर मनुष्य कैसे हैं, प्रयास तो जो है अच्छे अच्छे कार्यों के लिए कर रहे हैं, इतना कहावत बोलते हैं ना, वैसे नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल देते हैं, जैसे मेरा देश महान, हम उन लोगों के लिए जो वास्तव में भजन नहीं करते, जो उसके वास्तव में कहा जाता है कि लुच्चे गुंडे बेईमान फिर भी मेरा देश महान, जितना पापाचार हो सकता है उतना पापाचार कर लो फिर भी मेरा देश महान, सारे नियमों को ताक पर उठा करके रख दिया है जैसे कोई नियम ही नहीं है। और फिर भी हम बोलते हैं हम उन्नति कर रहे हैं जी, हर किसी से बोलो पूछो जो है ऐसे बात करता है कॉलर खटखटा करके जी, अब हम जो उन्नति के कगार पे है, उन्नति की तरफ है, ये उन्नति देख लो। घर से निकल गया, भगवान के भरोसे वापिस आ गया, वो भी बिना लुटे है, बिना शांति से आ गया, तो ये भगवान की बहुत बड़ी असीम कृपा समझ लेना चाहिए। तो क्लेश आक्रांतस्य तस्यैव तस्य एव, उनके लिए जो क्लेश संसार के जो आने वाले जो समय में इतने जो व्यक्ति नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो शोधने किम परायण है। आपका जो ज्ञान है कोटि सूर्य समह, आपका जो ज्ञान है करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है, तो इसलिए आप बताओ उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, उपाय क्या है उनके लिए, कैसे कलयुग के कलमस से, कलयुग के जो है दुराचारों से हम मुक्त हो सकते हैं, इस कार्य को हमें बताइए। और भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वरदते महान माया मोह निराशच्य वैष्णवे क्रियते कथम। हे गुरुदेव, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वरदते महान, महान विवेक वरदतो, जिससे जो है महान बुद्धि विवेक प्राप्त होता है, जिस ज्ञान से भक्ति से और वैराग से मिलकर के जो विवेक, जो महान विवेक की जो सृष्टि होती है, वो विवेक कैसे प्राप्त हो सकेगा, कैसे हमारी बुद्धि इस प्रकार की होगी। और माया मोह निराशच्य वैष्णवे क्रियते कथम, है जो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की जो दुर्लभ माया है इसको जो है कैसे पार कर जाते हैं, ये सारी बात हमें बताइए। श्रेयसाम यद भवेत श्रेय पावनाम च पावनाम, और कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तत्वत आदुना। गुरुदेव, हम जो हमारा प्रश्न है, श्रेयसाम यत भवेत श्रेय, जो सबसे उत्तम कोटि का साधन है, समस्त साधनों में जो श्रेष्ठ साधन है, उस श्रेष्ठ साधन का वर्णन ही करना और दूसरों को करना नहीं। पावना नाम च पावनम, जितनी भी पावन करने वाले वस्तुएं हैं या साधन है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ साधन को बताओ। और साथ साथ में हमें ऐसा नहीं है केवल पावन ही होना है, पवित्र होना है, कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत, जिससे जो है भगवत प्राप्ति हो, उस साधन को जो है आप हमें बताइए। ये है जो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं। इस प्रकार की जो है हमें जिज्ञासा करना चाहिए। तो इसलिए जब हम इस प्रकार की अथातो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान जो है उनकी बुद्धि को फिर क्या करते हैं, उनको जो है उसी प्रकार की मति दे देते हैं। ठीक है भैया, तू बिल्कुल मत कर, तू भूलना चाहता है तो ठीक है, मैं तुझे बुला देता हूं। सर्वस्य चाहं सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपमोहनम च वैदेश्य, क्या है, सर्वस्य चाम हृदि मत, सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपमोहनम च वैदेश्य सर्वे अहम वेद्यो वेदांत कृति वेद विदेह चाहं। तो हृदि सन्न आविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञान अपमोहनम, स्मृति ज्ञान और अपमोहनम, मत्तः मैं सबके हृदय में बैठा हूं। यदि कोई नहीं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहता है तो कोई बात नहीं है, अपमोहनम च उसकी मैं विस्मृति भी करा देता हूं। जब लगभग 6-7 दिन हो चुके महाभारत के युद्ध को, दुर्योधन ने देखा कि हमारे सैनिक जो है, हमारे कई सारे भाई मर गए, सैनिक मरते जा रहे हैं, पांडवों की तरफ से अभी तो नंबर भी नहीं लगा है, शुरुआत भी नहीं हुई मरने की, और हमारी में कंपटीशन लगा हुआ है मरने का, और जिनके ऊपर हमने विश्वास किया था, रण छेड़ा था पिता में भीष्म के द्वारा, भीष्म पर जो है विश्वास करके, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो गुस्सा में तिंतमाता हुआ जो है पिता में भीष्म के पास में गया, साथ संग दंडवत किया, दंडवत नहीं किया था उसने गुस्से में, तो पिता में भी समझ गए भाई ये गुस्से में है,
कहो सुयोधन, दुर्योधन पिता में भीष्म नहीं कहते, हमेशा सुयोधन कहते थे। हालांकि दुर्योधन दुष्ट था, लेकिन उसको जो है फिर भी पिता में, ये महान व्यक्तियों की यही अलंकार होते हैं, उनकी हर वाणी भी दुष्टों को भी इतना अच्छे शब्दों से जो है अलंकृत करती है कि वो जो है गदगद हो जाते हैं। कैसे आए सुयोधन? तब जो है पिता में, आप नहीं देख रहे हो, आज सातवां दिन हो चुका है, हमारे कई सारे सैनिक मर चुके हैं, मेरे 100 भाइयों में से कई सारे धराशायी हो चुके हैं, और अभी तक उनका एक नंबर नहीं लगा है, इसलिए हमने जो है युद्ध छेड़ा था, और आप तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहे हैं, यदि युद्ध नहीं करना है तो आप बंद कर दो, हम किसी दूसरे को नियुक्त कर देते हैं। तो एक क्षत्रिय के लिए इस प्रकार जो है, एक क्षत्रिय जब आगे बढ़ जाता है तो फिर पीछे हटना नहीं जानता, आगे बढ़ करके हंसते हंसते हुए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन भयभीत होकर के कभी भी पीछे पैर नहीं रखता है। और पिता में भीष्म के लिए कह रहे हैं कि तुम जो है क्या कर दो, युद्ध छोड़ दो, जिन्होंने कभी भी पराजय का मुख देखा ही नहीं, जो युद्ध लिया अकेले ने, उन्होंने उस युद्ध को जीत करके दिखाया। तब जो है पिता में भीष्म ने कहा, सुयोधन तुम इतने मूर्ख हो, इतने नालायक हो, नालायक तो नहीं कहा ये मैं कह रहा हूं, सॉरी, तुम इतने मूर्ख हो, तुमने, तुमको मैंने कई बार बताया इस बात को कि जिस अर्जुन को, जिस कृष्ण को तू साधारण व्यक्ति समझा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, आप नहीं जानते हो साक्षात नर और नारायण ही है। इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के भार को कम करने के लिए उन्होंने ही जो है अवतार लिया है, मैंने उसको तुमको पहले भी बताया है। सबने एक बार जो है देवताओं की मीटिंग हुई, तो उस समय जो है भगवान को जो है उसमें आमंत्रित किया गया, भगवान ने प्रकट होकर के और देवताओं की जो दुख की जो गाथा थी उसको सुना, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे देवताओं, मैं बहुत जल्दी ही इस पृथ्वी पर अपने सखा अर्जुन के साथ में प्रकट होने वाला हूं, आप निश्चिंत रहिए, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और बहुत जल्दी ही मैं इस पृथ्वी के भार को क्या करूंगा, कम कर दूंगा। पिता में भीष्म ने कहा, इस बात को मैं जानता हूं और मैंने तुझे बताया अभी, इसलिए अभी भी समय है, अभी भी समय है, तुम क्या करो, उनसे जो है संधि कर लो, युद्ध बंद कर दो, जो बचे हैं कम से कम उनके साथ में रह करके आ जाओ। लेकिन जो है अब जो सुना और सुन करके इधर से सुना, इधर से फट सुना निकाल करके प्रणाम किए बिना जो है झट से चला गया निकल करके, और फिर जा करके जो है युद्ध छोड़ दिया दूसरे दिन। तो अपमोहनम च, भगवान बोलते हैं कि जो नहीं सुनना चाहता, नहीं जानना चाहता, मन जानिए, नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञाना आश्रिम भाव माश्रितः। ये चार प्रकार के जो लोग हैं मेरे को नहीं समझना चाहते हैं, ठीक है मैं उनको विस्मृति करा देता हूं, मन समझो बिल्कुल भी, कौन कहता है समझने की जरूरत है। लेकिन गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, भ्रमित करते करते अनेक अनेक कष्ट सहते सहते जब गुरु की और प्रभु की जब कृपा होती है, तो जो है फिर एक सतगुरु का उसको जो है सानिध्य प्राप्त होता है, तब जा करके उस गुरु के सामने उसको क्या करना चाहिए, फिर अपनी जिज्ञासा करना चाहिए, हे गुरुदेव अब बताइए मैं कैसे संसार से उद्धार हो सकता है। जैसे अब राजा प्राचीन बरही जो है नारद जी से ये जो है जिज्ञासा कर रहा है कि हे गुरुदेव आप बताइए इस कर्म बंधन से अब कैसे मैं मुक्त हो सकता हूं, तो इसलिए हमें जो है जिज्ञासा करना ही चाहिए। जब तक ये जिज्ञासा नहीं होगी लोगों को ये मालूम नहीं चलेगा, या हमें ये मालूम नहीं चलेगा वास्तव में कष्ट क्या है या समस्या क्या है, तो हम भजन फिर क्या करेंगे। भजन की शुरुआत बाद में होती है, पहले शुरुआत होती है हमारी समस्या को पहले हम रियलाइज करें, अनुभव करें कि वास्तव में मैं कष्ट में हूं, मैं दुख में हूं, और इसका निवारण होना ही चाहिए, जैसे जो है राजा प्राचीन बरही ने किया था। तब जो है नारद जी अब उनको उपदेश करेंगे। तो इसलिए जो परंपरा है ये जो है क्या है, ये जो है नारद जी की परंपरा है। तो इसलिए इस नारद जी की परंपरा में हम आए, हम सभी का जो है परम कर्तव्य बनता है लोगों के पास में जा करके जो है और उनको समझाओ, उनको भगवान के बारे में बताओ, जिससे उनको पहले अनुमत उनकी जो बुद्धि में जो घुसा हुआ है संसार के विषय विलास घुसे हुए हैं वो हट करके थोड़ा ये बात आए कि वास्तव में मैं दुखी हूँ, नाना प्रकार की समस्या से जूझ रहा हूँ, तब जब ये बात आएगी तब जो है उसकी भक्ति का पहला कदम जो है प्रारंभ होगा। तो जब तक यही चीज नहीं है तो भक्ति तो फिर बहुत दूर की बात है। इसलिए हम सभी को जो है प्रचार प्रसार में जो है अधिक से अधिक देना चाहिए, जिससे संसार के लोग कर्म बंधन में फंसे हुए नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको जो है जा करके समझाओ, तो भगवत कृपा से आप गुरु परंपरा की कृपा से आपके द्वारा यदि उसके दिमाग में बुद्धि में बात आएगी तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने का भगवत धाम जाने का जो है प्रयास कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय।